जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जसदानंदन व्रज जनरंजन जसदानंदन व्रज जनरंजन जसदानंदन व्रज जनरंजन जसदानंदन व्रज जनरंजन जय जसदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Prabhupada.
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टतर सते श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टतर सते श्री भक्ति सिद्धांत सरसठ ठाकुर महाराज की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की समवेत भक्त वृंद की శ్రీల ప్రభుపాదకి నితాయి గౌర ప్రేమానందే ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయాల్ముదీరయే నష్టప్రాయే సుభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భాగవతీ ఉత్తమా శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టకే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భాగవతం క్యాంటో 9 అధ్యాయ 4 శ్లోక్ 64 సారీ 65 శ్లోక 65. ये दारागार पुत्र आक्त प्राणान्वितम् इमं परम् ये दारागार पुत्र आक्त प्राणान्वितम् इमं परम् हित्वा मां शरणं याता कथं तान् त्यक्तुम् उत्सहे ये दारागार पुत्र आक्त प्राणान्वितम् इमं परम् हित्वा मां शरणं याता कथं तान् त्यक्तुम् उत्सहे ये दारागार पुत्र आक्त प्राणान्वितम् इमं परम् हित्वा मां शरणं याता कथं तान् त्यक्तुम् उत्सहे। बोलिए। ये दारागार पुत्र दारागार पुत्र प्राणानिमं परम् हित्वा मां शरणं याता कथं तान् त्यक्तुम् उत्सहे हे दारागार पुत्र प्राणान्वितमिमं परम् हेत्वा मां शरणं याता कथं तान् त्यक्तुम् उत्सहे ये दारागार पुत्रात् प्राणान्वितमिमं परम् हे त्वां शरणं याता कथं तां त्यमुत्सहे। माताजी एदरागार पुत्रात् हित्वा मां शरणं व्यात कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे एदरागार पुत्रात् प्राणान्वितमिमं परम् शरणं हे दरागार पुत्रात् प्राणान्वितमिमं परम् हित्वा मां शरणं यदा कथं तां त्यक्तुमुत्सहे। शब्दार्थ ये जो भक्त दार पत्नी, अगार घर, पुत्र लड़के या बच्चे, आप्त संबंधी समाज, प्राणन यहाँ तक कि प्राण भी, बीतम संपत्ति, इमम ये सब, परम स्वर्गलोक को जाना या ब्रह्म से एकाकार होना, हित्वा त्याग कर, माम मुझको, शरणम शरण में, याता ग्रहण करके, कथम कैसे, तन ऐसे पुरुषों को, त्यक्तम त्यागने के लिए, उससे इस तरह उत्साहित हो सकता हूँ जो संभव नहीं है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। क्योंकि भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियां, बच्चे, संबंध या धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कैसे तरह छोड़ सकता हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान की पूजा ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च शब्द से की जाती है। इस तरह वो ब्राह्मणों के हितों से है। दुर्वासा मुनि महान ब्राह्मण थे, किंतु अभक्त होने के कारण वो भक्ति के लिए सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकते थे। वस्तुतः तो महान योगी जन स्वार्थी होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को मारने के लिए असुर उत्पन्न किया तो राजा भगवान की प्रार्थना करते हुए और उन्हीं पर पूर्णतः आश्रित रहते हुए अपने स्थान पर खड़े रहे, किंतु जब भगवान की इच्छानुसार सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना शुरू किया तो वो इतने व्याकुल हो उठे कि सारे विश्व के कोने कोने से शरण पाने के लिए भागते फिरे। प्राणों के भय से वो ब्रह्मा, शिव तथा अंत में भगवान के पास गए। उन्हें अपने शरीर से इतना मोह था कि वो एक वैष्णव के शरीर का विनाश करना चाह रहे थे, इसलिए उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी। और ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति भला किस तरह भगवान द्वारा उबार जा सकता है। भगवान उन भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। इस श्लोक में दूसरी बात ये कही गई है कि दार गार पुत्राप्त अर्थात घर, पत्नी, संतान, मैत्री, समाज तथा प्रेम के प्रति अनुरक्ति होने से भगवान की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। जो व्यक्ति चूल्हा चक्की से लिप्त रहना चाहता है वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। कभी कभी शुद्ध भक्त में भी पत्नी, संतान तथा घर के लिए आकर्षण हो सकता है, किंतु यदि उसी के साथ वो अपनी शक्ति भर भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान ऐसे भक्तों के लिए विशेष प्रबंध करते हैं। वो उसकी झूठी आसक्ति की वस्तुओं को छीन लेते हैं और इस तरह उसे अपनी पत्नी, घर, बच्चे, मित्र आदि की आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। भक्तों को अपने धाम वापस बुलाने के लिए उन पर यह विशेष कृपा है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखानुतंस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तत कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो भागवत के ये जो प्रसंग है बड़े ही हंस करके भक्तों के प्रति किस प्रकार के सावधानी रहना है, भक्तों के कार्यकलाप के प्रति, भक्तों के चरित्र, भक्त जो कार्य करता है उस कार्य के प्रति एक प्रकार का बुरा भाव न रखकर उनके प्रति किस प्रकार हमारा हृदय में आदर बना रहना है। चाहे वो कैसे भी भक्त हो और सही भक्त भी न हो, जिन्होंने भगवान का शरण लिया उनके प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए ये प्रसंग के द्वारा सिखाया जाता है। इतने बड़े योगी दुर्वासा जी कम के व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने किस प्रकार एक भक्त के सामने झुकते हैं और अपनी योग शक्ति किस प्रकार नष्ट हो जाती है, तो ये प्रसंग को बड़े ही सुंदर ढंग से श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिखा जा रहा है जो दो चरित्र है, एक है एक भक्त का, दूसरा है एक योगी का, एक दुर्वासा मुनि दूसरा राजा अम्बरीश, ये दोनों का चरित्र यहाँ पर दिखा जाता है। तो तथ्य ये है, अंतिम में निष्कर्ष यह निकलती है कि चाहे एक व्यक्ति कितने भी योग मार्ग में कितने भी बढ़े चढ़े होना क्यों, आखिर में ये परिणाम यह निकलती है कि उनका योग पद्धति, योग जो है, योग शक्ति जो है, उनको भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं कर पाता। क्योंकि दुर्वासा मुनि के भीतर जो इच्छा अपने जो प्रभुत्व राजा अम्बरीश के ऊपर है कि प्रभुत्व विस्तार करने की, प्रभुत्व जाहिर करने की जो इच्छा, वो इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो द्वारा इतने बड़ी भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा दुर्वासा जी को। इतने योग पद्धति के में आगे होने के बाद भी किस प्रकार वो भौतिक चुंगोल से वो अपने को छुड़ा नहीं पाते हैं, तो दुर्वासा जी साक्षात प्रमाण है। इतने बड़े योग शास्त्र की, इतने बड़े योग साधन करने के बाद भी किस प्रकार एक भक्त का, भक्त के सामने झुकते हैं। भगवान विष्णु के प्रति जब कोई थोड़ा भी भक्ति करें तो भक्ति उनको भगवान वचन देते हैं अपने भक्तों को, भगवद्गीता के भीतर त्रायते बहुत बड़ा विपत्ति से मैं मेरे भक्तों को बचा लेता हूँ। जिस प्रकार कर्मी ज्ञानी योगी लोग बच नहीं पाते, कर्मी ज्ञानी योगी लोग जिस प्रकार नहीं बच पाते हैं, किंतु मेरे प्रति थोड़ा सा भक्ति, मेरे भक्तों को किस प्रकार भक्ति के द्वारा मैं किस प्रकार आकृष्ट हो जाता हूँ, आकर्षित हो जाता हूँ और उनको मैं पोषण करता हूँ, मेरे भक्तों की पोषण करता हूँ। यहाँ पर भगवान स्वयं अम्बरीश महाराज का सुरक्षा दे करके, सुरक्षा रक्षा करके अपने भक्तों के हृदय के भीतर एक हिम्मत बढ़ाते हैं। मेरे भक्तों, हाँ चले कैसे भी भक्त हो, भले ही शुद्ध भक्ति के प्राप्त न हो, भले भक्ति के स्तर में वो भौतिक इच्छा भी आ रहे हो उसके भीतर, फिर भी मेरे भक्त मेरे प्रिय है, ये प्रसंग के द्वारा हमें सीखते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी यही बात बताते हैं कि राजा अम्बरीश एक गृहस्थ थे, कोई वानप्रस्थ नहीं लिए थे, ब्रह्मचारी या संन्यास नहीं लिए थे, बहुत बड़े ऐसा नहीं आश्रम को स्वीकार नहीं किए थे। और गृहस्थ जीवन में बहुत सारे समस्या के भीतर भक्ति करनी होती है, खासकर कलयुग में कलयुग में घरोई मामला इतने जटिल हो चुकी है वर्तमान समाज में, तो इस प्रकार परिवेश में भगवान का भक्ति करना, भगवान का निकट होना, ये बहुत मुश्किल है। फिर भी ये गृहस्थों के लिए एक बहुत बड़ी आशा देते हैं राजा अम्बरीश महाराज, खास करके गृहस्थ थे और गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा हृदय को बढ़ाते हैं। देखो हाँ, इस प्रकार का परिस्थिति में रहते हुए भी किस प्रकार भगवान का भक्ति कर सकते हो और भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये राजा अम्बरीश के चरित्र के द्वारा स्पष्ट हो रही है। तो राजा अम्बरीश खाली गृहस्थ नहीं थे, हम तो चार दीवार के भीतर आबद्ध है, हमारे जैसे भक्त चार दीवार के भीतर आबद्ध है, लेकिन राजा अम्बरीश जो थे वो सारे विश्व की राजा थे, सारे विश्व की पिता माता जैसे थे, सारे विश्व के ऊपर उनका देखभाल हो रही थी वो समय। और इस प्रकार परिस्थिति में वो एक बार एक व्रत किए लिए थे अपने जीवन में, भगवान संसिधि हरितोषणम, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वो एक व्रत अपने जीवन में लिए थे। और व्रत के पारण करते समय एक बहुत बड़ा योगी उनके घर पे अतिथि के रूप में पधारे, और अतिथि वो समय में अतिथि जब घर पे आते हैं तो अतिथि देव भव, अतिथि को देवता के रूप में हमें स्वीकार करते थे। अभी इस वक्त बॉम्बे में जो इतने सारे चीजों के महंगा जमाने में इतने सब वस्तुओं के दाम बढ़ गया है, दर बहुत पैसा हो गया है, तो इस वक्त यदि हमारा घर में कोई आता है तो हम घर के दरवाजा बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार महंगा जमाने में अतिथि भव के जगह में अतिथि और कुछ बन जाते हैं, उस समय में अतिथि भव, अतिथि देव भव, अतिथि को देवता के रूप में मानते थे, लेकिन अभी अतिथि की देव के जगह में और कुछ हो गया है, तो ये सब नहीं हो पाता है वर्तमान का समाज संसार में, वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता। तो ये राजा अम्बरीश ऐसे व्रत का पारण कर रहे थे, तो ठीक उसी अवसर पर ये योगीराज यहाँ पर पहुंचे, आकर के पधारे। तो राजा अम्बरीश थे, भक्त थे, और भक्तों का जो हृदय होती है तो बड़े ही विशाल होती, बहुत बड़ा होती है, वो ये नहीं देखते कि ये तुच्छ है, चींटी है, कीड़े कुत्ते, कुछ नहीं देखते, वो सबके भीतर भगवान की बास उनको भगवान का बास दिखते हैं, सारे शरीर के भीतर भगवान का निवास स्थान को वो खोज लेते हैं, उनके मन में वही खोजता है, वो बाह्य शरीर को नहीं देखता। भक्त जो होता है ये व्यक्ति का बाह्य शरीर कैंपा है, कोजा है, लंगड़ा है, ये सब नहीं देखता, तो वो शरीर के भीतर भगवान का वास है, वो चीज को वो देखता है, उनका नजर वही जगह पर जाता है। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़े भक्त होने के नाते, तो दुर्वासा मुनि जो पधारे तो दुर्वासा मुनि के स्वागत के लिए भोजन की याचना की कि हे योगीराज आप कुछ भोजन ग्रहण कीजिए। तो अम्बरीश महाराज के इस प्रकार का सम्मान से, स्वागत से दुर्वासा जी भी बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि राजन अभी मैं थोड़ा स्नान कर लूं, कि स्नान के पहले जो भोजन किया जाता है वो बहुत दूषित है, सही भोजन नहीं है, शास्त्र में ऐसे बताया गया है स्नान के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए, स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ऐसे तो कभी भी प्रसाद कभी ले सकते हो, प्रसाद ग्रहण करने श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। तो ऐसे तो प्रसाद कभी भी ले सकते हैं, किंतु विधि यह है, हमें इतने बड़े शक्तिशाली भक्त नहीं है कि हमें विधि की होड़ करके कुछ करें, हमारे जैसे कमजोर भक्तों के लिए भक्ति करने के लिए कुछ हमारे भक्ति जीवन में कुछ विधि लागू होनी चाहिए। तो ऐसे शास्त्र में बताया गया कि स्नान के बाद ही भोजन लेनी चाहिए, तो दुर्वासा जी भी यही किए कि अभी मैं स्नान नहीं किया तो मैं स्नान करके आता हूँ, तब तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो ये कह करके निकट के नदी में चले गए। और योगियों का बड़ा खूबी होती है, वो जब ध्यानस्थ होते हैं घंटों घंटों ध्यान में बैठ जाते हैं, और ध्यान से एक प्रकार का आनंद लेते हैं, योगी लोग जो है वो ध्यान से एक प्रकार का आनंद लेते हैं। तो दुर्वासा जी यही किए, नदी में स्नान करने के लिए गए और यहाँ पर ध्यानस्थ हो गए। हाँ, तो यहाँ पर पारण के समय जा रही है, तो संतों की जब जीवन में जटिलता की जटिल मतलब बड़े जटिल की समय आ जाती है, जीवन में जब जटिल परिस्थिति आ जाती है तो वो समय ये संतों की आश्रय लेनी चाहिए। तो राजा अम्बरीश यही किए थे। इतने बड़े राजा और बहुत बड़े भक्त थे, वो कोई मामूली नहीं थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। हाँ, इस पर भी इतने बड़े भक्त होने के बाद भी वो संतों की आश्रय लिए, भक्तों की आश्रय लिए। तो पूछे कि अभी मुझे क्या करना है, इस प्रकार का धर्म संकट में मैं हूँ, अभी अतिथि घर पर और मेरा व्रत का पारण के समय बीत रही है, तो इस प्रकार धर्म संकट में मैं मुझे क्या करना है। तो वहां पर भी वो संत लोग भी निरुत्तर रहे, वो कुछ निर्णय नहीं दे पाए। तो तभी जब संतों की आश्रय लेने के बाद भी भगवत साक्षात्कार होती है, तो पहले सीधा वो भगवान में मन नहीं लगाए। राजा अम्बरीश ने सीधे मन को भगवान को नहीं दिए, पहले संतों के द्वारा। फिर संत लोग जब कुछ न उत्तर न दिए, तभी जाके उनको उन्होंने अपने मन को लगाए भगवान में। तब भगवान के जब मन के लगाए, तब भगवान से उनको डायरेक्शन मिला, आदेश निर्देश हुआ कि आप इस प्रकार प्रक्रिया के द्वारा जल पीना नहीं पीना, इस प्रकार का प्रक्रिया आप सुने हो तो ये प्रक्रिया के द्वारा आप पारण कर सकते, व्रत को तोड़ सकते हो। जब इस प्रकार का निर्देश प्राप्त हुआ राजा अम्बरीश जी को, तो वो किए। और ये जो युगराज थे तो वो तो ध्यानस्थ थे, और ध्यान के द्वारा उनको पता हो गया कि ये राजा जो है कुछ खा लिया पी लिया तो आए वहां। अरे दुर्वासा जी, सहज उनको क्रोध होती है, सहज बहुत कम समय में वो क्रोधित हो जाते हैं। तो राजा को अम्बरीश महाराज कहने लगे, राजन आपने ये क्या किया, मैं आपके घर में अतिथि हूँ और अतिथि को देने के पहले आपने खा लिया। बड़े मैं धीर से कह रहा हूँ, लेकिन बहुत जोर से कह रहे थे, वो क्रोध में हो गए थे ना। अब क्रोध में जो व्यक्ति होता है उनका आवाज कैसा होता है, बहुत ऊंचा होती है। तो दुर्वासा जी ऐसे ही कह रहे थे, मैं तुमको अभी सब दिखाऊंगा तुम कितने बड़े भक्त हो, मैं अभी आपको दंड दूंगा। इसे कह के तो अपने जटा से एक बाल को उखाड़े और जमीन में पटके। योगियों का शक्ति जो है ना, वो उनके जटा में रहती है। आप लोग सुने होंगे भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज के समय एक योगी उनको परेशान बहुत सता रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी योगियों का बाल को सब निकाल दिए, तो उनका योग शक्ति नष्ट हो गया। उसी प्रकार ये जो दुर्वासा जी थे, उनका जो योगियों का शक्ति उनका जटा में रहती है। तो ये बाल को उखाड़े और एक बाल जमीन में पटके, तो तुरंत एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ। हाँ, तुरंत एक भयंकर राक्षस उत्पन्न, और भयंकर राक्षस के सारा शरीर से आग की लपटे इतने भयंकर रूप से निकल रही थी, जैसे कि लग रहा था कि वहां पर सबको जला देगा, भस्म कर देगा। तो तुरंत दुर्वासा जी का निर्देश लेकर वो राक्षस अम्बरीश महाराज की ओर झपझपटे। और वो समय जब वो राक्षस जब इस प्रकार आग बन करके झपट रहा था, तो अम्बरीश महाराज अभी क्या करें, भक्तों की आश्रय है भगवान है, जब भक्तों को विपत्ति आती है तो भगवान को ही मानते हैं, बस भगवान को ही बताते हैं अभी मुझे क्या करना है। इस प्रकार का है, आप ही मारो या बचाओ, आपके हाथ में, आपका ये डिसीजन आपका निष्पत्ति है, अभी मुझे क्या करना है मुझे। तो भगवान तुरंत इस प्रकार जब शरणागति भगवान ये अम्बरीश महाराज भगवान में लिए, तब भगवान ने अपने भक्तों की बचाव के लिए अपने जो अस्त्र है हथियार है उनको भेज दिया। आज सुदर्शन आ गए, और सुदर्शन से इस प्रकार का तेज निकल रही थी, तो ये जो दुर्वासा जी के द्वारा बनाया हुआ असुर उनके शरीर का आग के सामने ये नसरी सुदर्शन से जो आग निकल रही थी वो आग के सामने ये राक्षस का आग कुछ भी नहीं है। तो ये सुदर्शन पीछा किया दुर्वासा जी का, और दुर्वासा जी भागने लगे। हाँ, ब्रह्मा जी शिव जी वहां तक पहुंच गए। देखिए वहां पर ये संसार के सबसे बड़े व्यक्ति जो ब्रह्मा जी और शिव जी है, सबसे बड़े व्यक्ति, ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति भी उनको बचा नहीं पाए। ये भक्त के प्रति जब कुछ ऐसा होती है तो ये संसार के सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ब्रह्मा इंद्र भी, ब्रह्मा शिव भी, शंकर भी उनको रक्षा नहीं कर पाते, रक्षा नहीं दे पाते। तो भगवान आखिर में वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास, मुझे बचाओ, कुछ करो, मुझे सुदर्शन से आप बचाओ। तो वहां पर भी भगवान विष्णु वो भी कह देते हैं अहं भक्त पराधीन। आप पिछले श्लोक में पढ़ के आए हो अहं भक्त पराधीन, मैं भक्तों के सामने नाचार हूँ, भक्तों के सामने मेरा कुछ हुक्म नहीं चलता है, भक्त मुझे जैसे करता है मैं ऐसे ही रह बनता हूँ, तो भक्त के सामने मैं ये मामले में मैं कुछ ही नहीं कर सकता। तो आप जाओ जहां पर शुरू हुआ आपका ये विपत्ति, आप वहीं पर जाओ। तब जाकर के दुर्वासा जी फिर वापस आते हैं और अम्बरीश महाराज के चरण में शरण लेते हैं, तभी जाके ये जो सुदर्शन शांत होता है, उनके आग इतने दुर्वासा जी को जला रहा था, तभी जाके जब शरण लिए, शरण में बहुत बड़ा ताकत होती है। यदि हमें किसी जगह में, और शरण भी सही जगह में होनी चाहिए, यदि आप शरण सही जगह में लिए हो, ये भौतिक संसार ऐसे कोई ताकत नहीं आपको भगवत धाम से रोक सके, ये संसार में ऐसे कोई शक्ति नहीं आपको रोक दे भगवत धाम जाने से। तो हमारा शरण एक परफेक्ट एक सही जगह में भी होनी चाहिए। तो दुर्वासा जी यही बुद्धिमानी किए वहां पर, हाँ आखिर में यही किए, अपने जो शक्ति दिखा रहे थे तो अपने शक्ति को मतलब वो स्वीकार किए, उनके शक्ति भक्त की शक्ति के सामने मेरी योग शक्ति कुछ भी नहीं है। जब उनको ये एहसास हुआ, ये अनुभव हुआ, तभी जाके उन्होंने अम्बरीश महाराज का शरण लिए, तभी जाके वो बचे। हाँ तो आप इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियां का जो गाली है, वो गाली गोपियां जब गाली देती है ब्रज में, जो गोपियां गाली देती है वो गाली को भगवान श्री कृष्ण वेदों के स्तुति के रूप में मानते हैं। गोपियां जब गाली देती है भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण उनको वेदों के स्तुति के रूप में मानते हैं। और आप लोग सुने होंगे जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए चैतन्य महाप्रभु का ऐसे कोई दो भक्त गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो उस समय जगन्नाथ जी के जो सेवक लोग है वो कुछ जगन्नाथ जी को एक वस्त्र अर्पण कर रहे थे, और ये वस्त्र ऐसा जब राइस को बॉयल करते हैं, वो बॉयल से कुछ बॉयल का पानी निकलती है और पानी में वस्त्र को डुबाया जाता है, और डुबाने के बाद वही वस्त्र को जगन्नाथ जी को अर्पण किया जाता है। तो जब इस प्रकार का प्रक्रिया के द्वारा जगन्नाथ जी को वस्त्र अर्पित होती है, ये जब दो भक्त गए थे दर्शन के लिए, दो भक्त जब देखें, तो एक भक्त ने कहा अरे ऐसे कैसे ये जगन्नाथ जी का सेवक लोग ऐसे कैसे जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं, और जगन्नाथ जी भी ग्रहण उनको ले लेते हैं, ये कैसे जगन्नाथ जी भी उनका आस्कृत मतलब ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे कैसे सेवा है। तो उनके मन में थोड़ा संदेह हुआ, तो दूसरा भक्त बोलने लगा देखो ये जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी के भक्तों के मामला है, उसके बीच में हमें नहीं आना है। तो लेकिन ये भक्त के मन में थोड़ा संदेह हुआ, तो इस प्रकार देख करके वो अपने घर पे आ गए। आने के बाद वो भक्त ने सोए थे रात को, और रात को सोए अपने अपने, ये दोनों भक्त अपने अपने जगह में चले गए, और जो भक्त के मन में थोड़ा संदेह हुआ था, जगन्नाथ जी के सेवक के भीतर कमी दिखे थे, तो वो भक्त जब अपने घर में गया और सो गया, और जो सोया था तो जगन्नाथ जी बलदेव जी गए उनके घर पे, जाकर के जगन्नाथ जी ये गाल को, यो व्यक्ति का ये गाल में एक लाफा देते हैं, और बलदेव जी ये गाल को एक लाफा देते हैं, जगन्नाथ जी ये गाल में पीटते हैं, बलदेव जी ये गाल में पीटते हैं, जगन्नाथ जी बोलते बलराम पीटो ये गाल में, और बलदेव कहते हैं जगन्नाथ ये गाल में पीटो, तो दोनों भाई दोनों बाजू में साइड में खड़े होकर के व्यक्ति को दोनों गाल में थप्पड़ लगाते हैं, और दोनों भाई थप्पड़ लगा करके वो व्यक्ति को मुंह को ऐसा बना दिए, मुंह एकदम फूक गया था। तो जो सुबह उठना था वो भक्तों को, तो और अपने गाल को जब देखा आईना में, अरे ऐसा कैसे बन गया, राता रात एकदम शक्ल चेंज हो गया। तो और सुबह जो उठने वाला था और वो उठा नहीं। तो दूसरा भक्त जो था उनके साथ गया था, तो उन्होंने सोचा अरे ये तो जल्दी सुबह जल्दी उठ जाता है, तो अभी तक तो क्यों नहीं उठ रहा है, तो गया देखने के लिए। जो गया तो दरवाजे में खटखट आया, जैसे खटखट आया वो दरवाजा खोल दिया, जैसे ही खोल दिया अरे ये क्या, ये अद्भुत बन गया, ये कैसे हो गया, आपका राता रात ऐसा कैसे हालत हो गया। तो भक्त कहने लगे कल मैं जगन्नाथ जी के सेवक में कमी देखा ना, तो हाँ आज वो कमी को जगन्नाथ जी बलदेव जी स्वयं मेरे से दूर करने के लिए, मेरे भीतर से कमी को दूर करने के लिए स्वयं आकर के हालत बना दिया। आज जगन्नाथ जी भी उन्हें कहने लगे जाओ मेरे क्षेत्र छोड़ के चले जाओ, मेरे सेवक के भीतर कमी देखा ना, यहाँ पे आप रह नहीं सकते हो। तो जगन्नाथ जी इस पर आदेश देकर पिटाई करके दोनों भाई आ गए। और ये बात भी है जगन्नाथ जी का रथ जब चलती है ना, जगन्नाथ बड़दंड में जगन्नाथ जी का रथ जो जिसमें चलती है वो उसको बड़ा दांड कहते हैं उड़ीसा में, जो आप बम्बे में सड़क कहते हो, लेकिन उड़ीसा में सड़क को रास्ता या दांड कहते हैं। तो जगन्नाथ जी जो दांड में चलते हैं उनको बड़ा दांड कहते हैं, कि बड़ भगवान बड़े हैं और उनके जो रास्ता में चलते हैं वो रास्ता भी बड़े हैं, हाँ, तो उसको बड़ा दांड कहते हैं। और जगन्नाथ जी का जब रथ चलती है ना, तो जगन्नाथ जी इतने अच्छे से उनका रथ आगे नहीं जाती है, लेकिन जगन्नाथ जी के भक्त लोग जब उनको जगन्नाथ को गाली देते हैं, जब गाली खाता है जगन्नाथ तभी जाके अच्छा से आगे आगे चलता है। जब जगन्नाथ जी के भक्त लोग गाली देते, तू ऐसा है, तू लंपट है, ऐसा किया, बहुत खराब शब्द में कहते हैं, तो ये उड़ीसा लोग भी समझ सकते हैं किस प्रकार का गाली, बहुत खराब गाली देते हैं, बहुत खराब शब्द कहते हैं। जब इस प्रकार खराब शब्द सुनते हैं जगन्नाथ जी तो अभी जाके उनका रथ आगे चलती है। तो ये इस प्रकार का संबंध है, ब्रज के गोपियों का गाली कृष्ण को अच्छा लगती है और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का सेवक लोग का गाली जगन्नाथ जी को अच्छा लगती है। जब गाली खाते हैं तभी उनको आनंद होती है। जो पंडित बड़े बड़े पंडित लोग वेदों से स्तुति ला करके भगवान का स्तुति अर्पण करते हैं, तो वो जगह पर ये भक्त लोग यहाँ ब्रज के और जगन्नाथपुरी के भक्त लोग इस पर गाली दे करके भगवान का आनंद को बढ़ाते हैं। और भगवान भी ये बात कहते हैं, चतुर्वेदी नमे प्रिय, नमेश चतुर्वेदी प्रिय, हाँ मत भक्त सोपच प्रिय, मेरे जो चार वेद का ज्ञान, चार वेद को जो जाना है, चार वेद को जो जानता है वो मेरे प्रिय नहीं है। सोपच मत भक्त सोपच प्रिय, लेकिन इन्हें कुत्ता के मांस खाने वाले जो चंडाल परिवार में यदि कोई मेरा भक्त है, चतुर्वेद चार वेद को जानता है लेकिन मेरा भक्त नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मेरा प्रिय नहीं हो सकता। लेकिन वो व्यक्ति मेरे प्रिय है जिन्होंने, भले चंडाल है, चंडाल परिवार में कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में है, किंतु यदि वो मेरा भक्त है। और यही बात भी भगवद्गीता में भगवान घोषणा करते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, जमांग पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्यं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, अर्जुन जिन्होंने मुझे सब जगह में देखता है और मुझे ही सारे वस्तु में देखता है, ऐसा भक्तों से मैं दूर नहीं हूँ, ना वो भक्त मेरे से दूर है ना मैं उनसे दूर हूँ, वो ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो और यही बात को कहते हैं, जो चार वेद जानने वाले मेरे प्रिय नहीं है, जितना चंडाल परिवार में जन्म होकर के भी यदि मेरा भक्त है तो वो मेरे बड़े ही प्रिय है। चतुर्वेदी नमे प्रिय, हाँ भगवान श्री कृष्ण ये बात को कहते हैं। तो ये बात आप देखेंगे उद्धव जी भी को भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी की कहते हैं, उद्धव न साधय साधना के द्वारा, योग के द्वारा और सांख्य दर्शन के द्वारा और तपस्या त्याग दान, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा, दान के द्वारा मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। भक्त जीता जिस प्रकार एक भक्त अपने भक्ति के द्वारा मुझे जीत लेता है, भगवान अजीत है लेकिन साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ये बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव तुम सुनो, ये प्रक्रिया के द्वारा मैं इतने प्रसन्न नहीं होता हूँ, मुझे संतुष्टि ये प्रक्रिया मुझे, ये प्रोसेस मुझे संतुष्ट नहीं दे पाता, किंतु मेरा एक भक्त जब भक्ति करता है तो भक्ति के द्वारा मैं भक्त के पास मैं बेच जाता हूँ, वो भक्त मुझे भक्ति के द्वारा खरीद लेता है। तो ये बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति के द्वारा मैं जीत जाता हूँ, वो भक्त मुझे जीत जाता है। ये बात को भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं। आप लोग सुने होंगे तो ब्राह्मण लोग भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे थे, जो छोटे थे कृष्ण बलराम वो गए थे गया लेकर के जंगल में, गया चराने के लिए। तो एक दिन ऐसा जो ग्वाले थे उनको भूख लगा तो कृष्ण बलराम के पास आए, आकर के कहने लगे, कन्हैया दाऊ जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करो, कुछ खाने के लिए दो। तो ऐसे जैसे कहने लगे तो ये कन्हैया जो थे, ठीक है तुम लोग जाओ, ये थोड़ा ही नजदीक में कुछ ब्राह्मण लोग ना कुछ यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां पे जाओ और ब्राह्मण लोगों को बोलो, क्या बोलो, मेरा नाम मत लेना, आप ये दाऊजी के नाम लो, बलराम का नाम लो, मेरा नाम लोगे तो लोग आप लोग कुछ नहीं देंगे, दाऊजी का नाम लोगे शायद हो सकता है कुछ आप लोगों को देंगे, क्योंकि मैं एक वैश्य हूँ और समाज में ऐसे प्रथा है, समाज में ऐसे नियम है, तो जो ब्राह्मण है, जो समाज में जो हाई क्लास के मतलब उच्च ब्राह्मण है, जिनमें मति भगवान में ऐक्यांतिक है, एकनिष्ठ ब्राह्मण को ही दान देने की शास्त्र में आदेश है, ऐसे ब्राह्मणों को ही दान दिया जा सकता और किसी को नहीं। हाँ, आपत्तिकालीन परिस्थिति में आप किसी को भी दान दे सकते हो, लेकिन दान एकमात्र वही ले सकता है जो ब्राह्मण है। दान लेने की योग्य पात्र ब्राह्मण है, तो दान ब्राह्मण को ही देना चाहिए। तो मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं तो ब्राह्मण नहीं, मैं तो वैश्य हूँ। मैं ब्रज का नंद महाराज के पुत्र होने के नाते तो मैं एक वैश्य हूँ और नंद महाराज एक वैश्य है, तो मैं वैश्य को कौन, ब्राह्मण लोग क्यों दान देंगे? और क्षत्रियों को भी नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण लोग राजी हो सकते हैं कि एक क्षत्रियो को दान देने के लिए इच्छा कर सकते हैं। अरे बलराम जो है वसुदेव के पुत्र है, क्योंकि सप्तम गर्भ में रोहिणी के स्थानांतरित हुए थे देवकी के गर्भ से, तो ये बलराम जो है वो वसुदेव के पुत्र है और वसुदेव एक क्षत्रिय है, तो वसुदेव क्षत्रियो के पुत्र होने के नाते बलराम अभी क्षत्रिय है और मैं एक वैश्य हूँ, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण वैश्य को ये ब्राह्मण लोग नहीं देते हैं, दान नहीं देते हैं। तो हो सकता है क्षत्रियो को कुछ दान दे सकते हैं ये ब्राह्मण लोग। तुम लोग जाओ 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 ये ब्राह्मणों को कुछ मांगो बलराम के नाम लेकर। और ये दोनों गए ना, सॉरी ग्वाले लोग गए, ग्वाले बालक लोग गए, जाकर के ब्राह्मण को कहने लगे कि देखो अभी निकट में कृष्ण बलराम है और हमें बहुत भूख लगी है और हमें कृष्ण बलराम भेजे हैं, तो हमें कुछ खाने के लिए खाद्य द्रव्य दो। तो ब्राह्मण लोग यज्ञ में लगे थे, तो वो बोले वो बालक सोच करके वो उनको नेग्लेक्ट कर दिए। यदि यज्ञ का उद्देश्य क्या है, यज्ञ के उद्देश्य है विष्णु को जानना। ये ब्राह्मण लोग इतने बड़े यज्ञ कर रहे थे कि भगवान विष्णु को जानने के लिए, लेकिन भगवान जब अपने भक्तों को भेज रहे हैं, ग्वाले कौन है, भगवान का प्रत्यक्ष विग्रह है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो साक्षात भगवान की विग्रह जैसे ही है, तो भगवान अब कृष्ण बलराम स्वयं अब ये ग्वाले को भेजते हैं, जाओ ब्राह्मण के पास, इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं उनको दर्शन दो और उनसे उनके हाथों से यज्ञ की भाग को स्वीकार करो। हाँ, तो ये आदेश लेकर, भगवान का आदेश लेकर के ग्वाले पहुंचे वहां पे, जब कहने लगे उनको नकार दिए, जाओ जाओ तुम बालक लोग क्या ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो वहां पर यज्ञ में हमारे, जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ, और नेग्लेक्ट कर दिए। और ये ग्वाले जो थे तो निराश होकर के आए कृष्ण बलराम के पास आए और कृष्ण बलराम को कहने लगे देखो आप भेजे थे लेकिन ये तो कुछ हमें दिए नहीं। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम ग्वाले को फिर उनके पत्नियों के पास भेजते हैं, जाओ उनके पत्नी वो लोग नहीं दिए ना, तो उनके पत्नियों के पास जाओ, उनके पत्नियों को बोलो कि कृष्ण बलराम कुछ मांग रहे हैं, उनको कुछ भूख लगी है तो कुछ मांग रहे हैं। तो वो गए उनके पत्नियों के पास और पत्नियों के पास पहुंच करके घर में थी वो उनके पति ब्राह्मणों की पत्नियां, तो जाकर के कहने लगे कि कृष्ण बलराम को बड़े भूख लगी है आप लोग कुछ दीजिए। और जैसे ही सुने ब्राह्मण की पत्नियां जैसे ही सुने कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है और खाने के लिए कुछ ग्वाले को भेजे हैं, तुरंत घर में जितने यज्ञों का पकवान बनाए थे, पूरी हलवा रसगुल्ला गुलाब जामुन कचौरी पकौड़े, आपके मुंह में सब लाल आ गया होगा तो ये सारे बनाए थे वो यज्ञों का सामग्री सब, तो वो सारे अपने सर में लिया और भाग चले। और जो भाग रही थी ब्राह्मण की पत्नी या भाग रही थी, तो वो ब्राह्मण की पत्नियों को उस समय स्त्रियों को घर की जो बहू होती है तो इतने फ्रीडम नहीं होती थी स्त्रियों को उस समय कि अकेले अकेले घर से पैर निकाल दें। अभी तो बहुत और कुछ हो गया, लेकिन उस समय घर से जब स्त्री निकलती थी अपने पति के सामने साथ होती थी, नहीं तो पुत्र के साथ होती थी, ना अपने पिता के साथ होती थी। तो ये किसी के साथ होनी चाहिए, स्त्री को अकेले नहीं, किसी के साथ उनको, क्योंकि हमेशा स्त्रियों को एक प्रोटेक्शन चाहिए। स्त्री इतने कमजोर है तो उनको हमेशा ऐसे कि देवी सीता को जब ने भगवान राम लक्ष्मण चले गए तो उसे वो मौका का सुजग लेकर के रावण ने हर लिया। देवी सीता कितने बड़े शक्तिशाली स्त्री है, फिर उनको जब उन्होंने घर के घर में अपने पिता के घर में जब थे वो मिथिलेश नरेश के द्वारा सुरक्षित थे, और जब जंगल में गए तो राम लक्ष्मण भगवान राम लक्ष्मण के द्वारा सुरक्षित थे। जब राम लक्ष्मण जंगल चले गए थे तो उसी अवसर उनको उनके ऊपर रावण ने उनको ले लिया। तो इसीलिए वहां से प्रमाण होती है, वेदों से प्रमाण मिलती है कि हमेशा स्त्रियों को एक सुरक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये स्त्रियां जब घर से निकल रही थी तो उस स्त्रियों का पिता ससुर लोग उनके पुत्र लोग उनके पति लोग उनको रोकने लगे। और लेकिन जब एक व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है फिर ये दैहिक संबंध उनको रोक नहीं पाता। भले हमें हमारा पति लोग छोड़ दें, भले ये समाज हमको त्याग दें, भले हमारे ससुर लोग हमको धिक्कार दें, सारा समाज हमको घृणित दृष्टि से देखें, फिर भी हाँ एक जब कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं कोई व्यक्ति तो फिर वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। वो ब्राह्मण पत्नियां भी यही किए, तो सारे बंधन को क्योंकि कृष्ण का बंधन का बुलाया आया था तो सारे बंधन को छोड़कर वो कृष्ण बलराम के पास जाने के लिए तैयार हो गई और चल दिए और कृष्ण बलराम के पास पहुंचे। पहले ब्राह्मण पत्नियां अपने कानों में सुन रखी थी कृष्ण ऐसे हैं, उनका सौंदर्य उनका सब कीर्ति के जसोस्वी कीर्ति के बारे में सुन रखी थी, देखे नहीं थी। पहले किसी व्यक्ति को साधु और भगवान को देखना है तो पहले कानों के द्वारा देखना है, कर्ण रंध्र से पहले आंख पहले चक्षुइंद्रियों के द्वारा देख नहीं जा सकते हैं। पहले कर्ण रंध्र साधु को या भगवान को देखना है पहचान करना है पहले कानों के द्वारा बाद में जो कुछ। तो ये ब्राह्मण पत्नी यही की थी, पहले कानों के द्वारा भगवान के कीर्ति को सुन रखी थी लेकिन कानों के द्वारा सुन रखी थी देखे नहीं थी, प्रत्यक्ष रूप में देखे नहीं थी, लेकिन अभी वो सामने कृष्ण को देख रही है। और कृष्ण को जब देखती है तो एकदम उनका सौंदर्य को देखती है तो वहां पर कृष्ण उनके ब्राह्मण पत्नियों के चक्षु के द्वारा चक्षु इंद्रियों के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवान उनके चक्षु के रास्ता में ब्राह्मण पत्नियों के चक्षु के रास्ता में वो उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। और जब हृदय में प्रवेश करते हैं तो ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण को आलिंगन करते हैं। तो ये आलिंगन के बाद ब्राह्मण पत्नियां ना भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि अभी चले जाओ अपने पति के घर में अपने घर पे चले जाओ। तो वहां पर ब्राह्मण पत्नियां कहती है इस प्रकार परिस्थिति होकर के हमें आए हैं, इस प्रकार का परिस्थिति में हम आपके पास पहुंचे हैं और कौन सा घर में आप बैठते हो, आप ही प्रकृत घर हो। घर मतलब एक आश्रय की जगह है, जो घर में अभी रह रहे हैं वो वास्तविक घर नहीं है, घर है भगवान के चरण कमल। कि भगवान का चरण कमल ही प्रकृत आश्रय है, वही रहने की जगह है, वही हमारा प्रकृत आश्रय निवास की स्थान है। तो ये ब्राह्मण पत्नी कहने लगी अभी आप कहां भेज रहे हो, तो आप जानते हो किस प्रकार का परिस्थिति हमारे साथ हुआ और हमें आपके पास पहुंचे, फिर आपके आपके चरण में आश्रय लेने के बाद फिर और कौन सा आश्रय बाकी रह जाता है, हम नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम जाएंगे भी तू भी हमको हमें ग्रहण कौन करेगा। तो इस प्रकार के एक जो भगवान के भक्त होते हैं तो इस प्रकार के होते हैं। और ये बात भी ब्रज में जसोमती मैया कहती है, भगवान श्री कृष्ण को जब पुत्र के रूप में तुम माता मरे पुत्र भावे करे लालन पालन, जसमती मैया भगवान को पुत्र के रूप में लालन पालन कर रही थी और सखा लोग स्कंदे आरोहण सखे लोग भगवान के कंधे में चढ़ रहे थे, तुम कौन बड़े लोग हो, हाँ ऐसे कहते थे ग्वाले लोग कहते थे भगवान को कि तुम कौन बड़ा लोग हो गए हो, हमसे कौन बड़ा हो गए हो, ऐसे कह करके बैठ भगवान कृष्ण बैठते थे और उनके कंधे के ऊपर ये सब चढ़ते थे। तो इस प्रकार भगवान जब ब्रज में रहते थे इस प्रकार लीला करते थे। तो यही बात को भगवान भी दुर्वासा मुनि को कहते हैं अहं भक्त पराधीन, और यही बात को भी पितामह भीष्म कहते हैं जंग मन्य से मातुलंग प्रियं मित्रं सुहृतम सौहृदाद अथ सारथिम। युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म कहते हैं हे युधिष्ठिर महाराज आप लोग जिनको मातुलें मतलब मामा के लड़के और प्रिय मित्र सुहृद इस प्रकार का समझ रहे हो और ऐसे समझ रखे हो, ये व्यक्ति आप लोगों के प्रेम के वजह से आप लोगों का सारथी बन गए हैं। ये व्यक्ति यदि आपका सारथी बना है कृष्ण यदि भगवान कृष्ण यदि आप लोगों का सारथी बना है केवल सौहृदाद अथ सारथिम, सौहृदाद मतलब प्रेम के वसीभूत होकर, प्रेम के वसीभूत होकर ये आज आप अथ सारथिम मातुलम प्रियम मित्रम ये जंग मन्य से, आप जो मन में सोच रखे हो ये हमारा मित्र है, प्रिय है, सुहृद है, ऐसा जो सोच रखे हो ऐसा नहीं है, ये केवल आप लोगों के प्रेम के वसीभूत होकर आप लोगों का सारथी बने। तो यही बात को भी भगवान प्रमाण करके दिखाते हैं। यही बात को भी कुंती महारानी कहती है नमकिन। और ये बात भी चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त है, चैतन्य महाप्रभु के भक्त है वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त का जीवन ऐसा था, तब भगवान उनको कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे भक्ति के प्रेम में इतने में वसीभूत हो चुका हूं कि तुम मुझे जहां बाजार में लेकर जहां पर बेचोगे मैं वहीं पर बिक जाऊंगा। तुम्हारे में मैं इतने अधीन हो चुका हूं, तुम मुझे जहां लेकर के बेचोगे मैं वहीं पर बिक जाऊंगा। हाँ, तो वासुदेव दत्त का भगवान के चैतन्य महाप्रभु के प्रति इस प्रकार का उत्कट प्रेम था। और वासुदेव दत्त को कोई जानते, बहुत बड़े व्यक्ति नहीं थे। अरे यही बात को भी कुंती महारानी कहती है नमन किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्त न आत्मारामाय शांताय कैवल्य बतय नम। भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या है? अपने को अकिंचन मानना। अकिंचन व्यक्ति का संपत्ति भगवान है, ये बात को कुंती महारानी कह रही है। नम अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचन के वित्त हो, संपत्ति हो, तभी जाके हमें भगवान का दर्शन होती है। ये बात को भी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जीवन को देखेंगे तो किस प्रकार वो टॉयलेट के भीतर बैठ करके भजन करते थे। और गंगा के किनारे पड़े हुए जो मनुष्य के खुपड़ी है, ये खुपड़ी में पानी भर करके पीते थे। और कैसे फेंका हुआ कोई गंगा के किनारे चावल फेंक दिया, उसी को लाकर कच्चा चुबा चुबा के खाते थे। फिर दो दिन में ऐसे ऐसे कच्चा चावल चुबा करके रहते थे, भजन करते थे, इस प्रकार उनका जीवन। एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ऐसे बैठे थे तो अचानक कलकत्ता से एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति उनके पास आया। तो धनी व्यक्ति जब आया तो वो धनी व्यक्ति आकर के ऐसे खड़ा है और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ऐसे ही बैठे हैं। तो उसी समय और एक भक्त आया, आकर के गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को एक साल दिया, नया साल दिया। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो व्यक्ति से उस साल को लिए, लेकर के ऐसे कंधे में डाले, डाल करके और साल को बार बार देख रहे थे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ऐसे देख रहे थे। हाँ बढ़िया बढ़िया कर रहे थे और वो व्यक्ति बहुत प्रशंसा कर रहे थे। कितना अच्छा साल दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे कह रहे थे। तो कलकत्ता से जो धनी व्यक्ति गया था वो सामने बगल में खड़े होकर के सब देख रहा था। और ठीक उसी समय और एक व्यक्ति आया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, आकर के कुछ पैसा दिया, कुछ रुपए दिए। तो गौर किशोरदास जी महाराज वो रुपए को भी लिए उनके हाथ से, वो जो दिया उनके हाथ से लिए, लेकर के अपने जो धोती पहने थे वो धोती में उनको दो चार गांठ लगा करके उनको संभाल के रखे। आ रहे थे उसको देख रहे थे, है ना ऐसा ऐसे देख रहे थे, बार बार देख रहे थे, ऐसे ऐसे अपने कमर को ऐसे खोज रहे थे अपने हाथों के द्वारा, ठीक जगह में रखा ना, कहीं निकल नहीं गया ना, ऐसा ऐसा रख रहे थे, देख रहे थे। तो इस प्रकार का एक्टिंग कर रहे थे, इस प्रकार का कर रहे थे। तो जो कलकत्ता से जो धनी व्यक्ति आया था वो बगल में खड़े खड़े ये सारा दृश्य को देख रहा था। तो सारे देख रहा था तो खड़े खड़े उनका मन में एक विचार आया, अरे मैं तो और कुछ सुन रखा था लेकिन ये बाबा जी महाराज तो और कुछ है। तो मैं तो सुना था बहुत बड़े विरक्त व्यक्ति है, बहुत बड़े विरक्त पुरुष है, लेकिन ये क्या है? तो ये एक व्यक्ति साल दिया तो उनका बहुत बढ़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और अपने साल को अपने शरीर में ढक रहे हैं, और ये व्यक्ति कुछ पैसे दिए वो पैसे को कितने बार बार रख रहे हैं, देख रहे हैं, रख रहे हैं, ऐसा क्या है? तो उनके मन में बड़े संदेह हुआ। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के साथ वो क्या बात क्या करेगा, वो खड़े खड़े दूर में खड़ा था, वो खड़े खड़े उधर से ही क्या किया, बैक मुड़े, पीछे मोड़ तेज चल, और पीछे मोड़े और चल दिए, कलकत्ता चल गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब कलकत्ता कुछ काम के लिए, गौर किशोरदास बाबा जी कुछ काम ऐसा था तो वो कलकत्ता गए थे। और भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज जब कालकाटा गए थे वही धनी व्यक्ति तब भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज को मिले, और जब मिले वो धनाढ्य व्यक्ति धनी व्यक्ति जो गर्ग सदा बाबा जी महाराज को मिलने के लिए आए थे, तो जब मिले भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज को तो वो कहने लगे अरे आपके गुरु महाराज के विषय में तो मैं बहुत ही बढ़ाई सुना था, लेकिन मैं एक बार एक गया था उनका दर्शन लेने के लिए, लेकिन वो एक व्यक्ति ने कुछ साल दिया, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे दिए, तो पैसा और साल को लेकर के हाँ बड़ा ही प्रशंसा उनका गुण गा रहे थे, ये ऐसे कैसे। तो गुरुकिशोरदास बाबा जी महाराज वो समय वो व्यक्ति से पैसा लिए और साल लिए, तो लेकर के तो कुछ दिन के बाद वो दूसरे किसी को दे दिया, पैसा दे दिए और साल को भी दे दिए, लेकिन वो इस प्रकार का अभिनय कर रहे थे ये जो धनी व्यक्ति का संगति से दूर रहे धनी व्यक्ति। ये भी चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्रदेव को इसीलिए मिलने, क्योंकि राजा जो होते धनी व्यक्ति जो होते हैं वो स्त्रियों के और धन की चुंगल में रहते हैं, धन के बीच में रहते हैं, धन के बीच में और स्त्रियों के बीच में धनी लोग रहते हैं। तो ये गौरकिशोरदास भक्ति सिद्धांत ना चैतन्य महाप्रभु भी इसीलिए राजा प्रताप रुद्रदेव को मिलने के लिए नहीं कह इच्छा नहीं कर रहे थे, तो वही बात को गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज भी अपने जीवन में दिखाए। तो ये धनी व्यक्ति आए थे, मैं ये धनी व्यक्ति से कैसे दूर रहूं, कि धनियों की संगति करें विषय की संगति करें तो ये विषय का जो संस्पर्श है वो हमारा भजन में बहुत बड़ा बाधक है। देखिए गौरकिशोर बाबा जी महाराज कितने आध्यात्मिक मार्ग में कितने बड़े चढ़े व्यक्ति है, फिर भी वो धनी विषयों से कितने अपने भक्ति को सुरक्षा के लिए बचाव के लिए वो कितने दूर दूर होते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज वास्तविक में ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि साल के पैसे के भोके नहीं थे, वो वास्तविक ये वो कर रहे थे, इसलिए ये कर रहे थे कैसे ये धनी व्यक्ति का मेरे प्रति बुरा नजर बुरा भाव उत्पन्न हो, वो धनी व्यक्ति के मन के भीतर बुरा भाव को उत्पन्न करने के लिए गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज इस प्रकार का अभिनय कर रहे थे और सक्षम भी हुए। हाँ तो गए और भक्ति सिद्धांत महाराज स्वामी महाराज को जब बोले तो भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज कहने लगे आप वैष्णव दर्शन से वंचित हो गए। गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज जैसे वैष्णव, वो वैष्णव की वैष्णव की कृपा से ही वैष्णव का दर्शन होती है, अति पुण्य होने से एक शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आते हैं, तो आप वैष्णव के दर्शन से वंचित हो गए, आप गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज को नहीं पहचान पाए। भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज कहने लगे वो धनाढ्य व्यक्ति को आप गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज को नहीं पहचान पाए। हाँ तो ये और इसी प्रकार देखेंगे भगवान से यहाँ पर दुर्वासा जी को कहते हैं मेरे जो भक्त होते हैं इस प्रकार का बहुत बड़े हृदय के होते हैं, भले समाज के सामने वो बहुत बड़े ऐसे अपने को प्रस्तुत करते हैं किंतु ऐसे नहीं होते हैं भक्ति। ये भी हमें रूपा जी के जीवन में हमें देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की कि पृथ्वी तो आछे जाते नागराजी ग्राम सबत्र प्रचार हई मोर नाम, ये भविष्यवाणी को जब प्रचार भविष्यवाणी की है तो ऐसे कि भक्ति वो समय जो गौड़ीय वैष्णव लोग भी चैतन्य महाप्रभु ये भविष्यवाणी की है कि नगर और ग्राम में मेरे नाम की कीर्तन फैलेगा, सारे विश्व के कोने कोने में मेरे पवित्र नाम पहुंचेगा। लेकिन वो समय जो कुछ गौड़ीय वैष्णव थे यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो शिष्यों में से कुछ शिष्य लोग भी बड़े चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी के प्रति संदिग्ध मानते थे, उनको वो की विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ये अफ्रीकन ये अमेरिकन और ये मंगोलियन वो यूरोपियन ये लोग वैष्णव बन सकते हैं, इस प्रकार के मृक्ष लोग ये वैष्णव बन सकते हैं, किंतु प्रभुपाद जी के हृदय में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है ये भविष्यवाणी को साकार सफल बनाने के लिए प्रभुपाद जी के हृदय जो साधु हृदय है ये साधु हृदय उनको सात दरिया पार करके न्यूयॉर्क में पहुंचा दिया, सात दरिया सात समुद्र पार करके लॉस एंजल्स में पहुंचा दिया और बोस्टन मॉन्ट्रियल ये जगह में प्रभुपाद जी को लेकर खड़ा करा दिया, और ऐसे जगह में प्रभुपाद जी खड़े होकर के ऐसे मिलेच्छों के बीच में होकर के प्रभुपाद जी जैसे संत, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो भविष्यवाणी थी वो भविष्यवाणी को सफल बनाना था, और अपने गुरु के जो आदेश थी प्रभुपाद जी के प्रति जाओ चैतन्य महाप्रभु के जो वाणी है चैतन्य महाप्रभु के जो संदेश है ये पाश्चात्य देश के पाश्चात्य देशवासियों को प्रदान करो, दान दो। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के वाणी के प्रति और गुरु के आदेश के प्रति जो प्रभुपाद जी का हृदय है, और संकीर्तन आंदोलन के कीर्तन भगवान के नाम कीर्तन के प्रति जो प्रभुपाद जी का जो अटल विश्वास है, वो अटल विश्वास उनको सक्षम बना पाया ऐसे ऐसे जगह में ये इस्कन का केंद्र को बनाने के लिए। प्रभुपाद जैसे महान व्यक्ति, और प्रभुपाद जी जब कई नए जगह में जाते थे खाली शिष्य बनाने के लिए नहीं, कि और नया नया केंद्र बनाने के लिए नहीं, ये इस्कन जो बीज बोए हैं वो बीज को विराट वृक्ष के रूप में बड़ा करने के लिए उसको जो जो कर चुके थे प्रभुपाद जी, जो ये सारे विश्व में कर चुके थे, इसीलिए इतने उम्र में वो घूम रहे थे वो जो कर चुके हैं उनको बनाए रखने के लिए। और प्रभुपाद जी का ये भी इच्छा थी मुंबई जैसे महानगरी में भी एक इस्कन के केंद्र हो, और यही भी हुआ राधारास बिहारी का, और श्रीधाम मायापुर में और वृंदावन जैसे धाम में भी इस्कन का केंद्र हो। ये प्रभुपाद जी अपने इच्छा को पूरा करने के लिए उनको बहुत बड़ा कठोर विरोध का लोहा लेना हुआ, और भी सक्षम हुए। और प्रभुपाद जी कह रहे थे ये जो इस्कन संस्था एक बहुत बड़ा विशाल भवन नहीं है, ये एक शिक्षा केंद्र है, ज्ञान की केंद्र है। जिस प्रकार आज के समय में लोग भौतिकता के प्रति रुचि रखे हैं, तो ये भौतिकता प्रति आसक्त लोगों को किस प्रकार उनको वहां से उनको उबार करके ये इस्कन संस्था में ला करके एक प्रकार का संस्कृति, इस प्रकार का ज्ञान दिया जाए, ये भौतिक आसक्ति से अपने को मुक्त हो, तो इस प्रकार उद्देश्य रख करके प्रभुपाद जी से संत तो इस्कन संस्था को खड़ा कराए। तो यहाँ पर भगवान भी यही कह रहे हैं, ऐसे संतों को मैं कैसे त्यागूं, जो संतों ने मेरे कीर्ति को सारा संसार में प्रचार करने की, क्योंकि भक्त जो होता है भगवान का कीर्ति को सारा विश्व में पहुंचाता है। भक्त यदि नहीं होता तो भगवान को कौन जानता, भगवान का संदेश को कौन पहुंचाएगा, भक्त ही ये कार्य कर सकता है। तो भगवान कहते हैं, हे दुर्वासा जी, हे योगीराज, ऐसे भक्त लोग जब अपने मेरे सेवा करने के लिए, मेरा सेवा करने के लिए, मेरे संदेश को सारा संसार में बांटने के लिए अपने घर को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, बैंक बैलेंस को छोड़ा, अपने सारे प्रॉपर्टी को छोड़ा, मान जस, कभी कभी भक्तों को टकले हैं, अंगली दिखाते हैं, मारते हैं, कितने विरोध होता है, उनको सोली के ऊपर जाना होता है, कितने बंदूक का सामना करना होता है, उनको लाठी का पहाड़ मार भी खाना होता है, उनके पर कितना कितना प्रहार भक्तों को सहन करना होता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, दुर्वासा जी, ऐसे जब मेरे भक्त होते तो ऐसे भक्त मैं कैसे त्यागूं, ऐसे भक्तों में कैसे छोड़ूं, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर नहीं कुछ कर सकता। आपने जिनके चरण में अपराध की, जिनके जहां से आपका जीवन में ये दुख आया, तो उनके पास जाओ, ये दुखों से आपको मेरे भक्त ही आपको उबार सकता है, तो जाओ, आप वहीं पे जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी को भी रक्षा नहीं, भगवान विष्णु भी दुर्वासा जी को रक्षा नहीं दे पाते। तो असलियत में भक्त हमारे जो आश्रय है भगवान के भक्त है, हमें इतने शक्तिशाली भक्त नहीं है डायरेक्ट भगवान के आश्रय में चले जाए, भक्तों के आश्रय से ही हमें भगवान के आश्रय में जा सकते हैं। यही बात भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भरत पद कमल उदास अनुदास उदास, भक्ति का गुह्य को जानने के लिए, भक्ति का रहस्य को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रकार सिस्टम होती है, प्रोसेस होती है, बाय प्रोसेस हमें भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। तो यही बात को भगवान दुर्वासा जी से, महान योगी, कितने बड़े योगी है, ऐसे योगी को भी शिक्षा देते हैं, मेरे भक्तों के शरण में आओगे तभी जाके मुझे समझ सकते हो। तो यही बात को भगवान अपने को समझा जगत के सामने पहचान कराने के लिए तो शिक्षा देते हैं कि मेरे भक्तों के शरण में आओगे तभी जाके मुझे पहचान कर सकते हो। तो यदि हमें भगवान को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो उनके भक्तों के संरक्षण में तभी जाके हमें भगवान को जान सकते हैं। तो यही प्रसंग के द्वारा कि आज क्लास सुधांशु प्रभु का था, तो सुधांशु प्रभु को क्लास नहीं दिए, तो हमारे प्रभु जी मुझे बोले कि आप दो क्लास, तो थोड़ी समय के भीतर मैं इतना ही तैयार किया, तो जो भी प्रस्तुत किया आप लोगों से, तो निश्चित रूप से भगवान का कीर्ति ऐसे अमृत है, यदि थोड़ा ये अमृतों में से एक कण भी लोगे तो आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। तो ये अमृत का एक कण लेकर के आपका आप लोगों का जीवन कुछ सफल बनाओ, और इतने में हमें ये प्रसंग को रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। समय हो गया तो प्रश्न तो हो नहीं सकता, तो हरे कृष्ण।